आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान की तैयारियां पूरी। 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों के लिए कल होगा मतदान। प्रदेश में लंबित मुकदमों के समाधान के लिए 29 जुलाई से 3 अगस्त तक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। चमोली जिले में स्थित विश्व धरोहर फूलों की घाटी कल से पर्यटकों के लिए खोल दी जाएगी। और मौसम विभाग ने कल से प्रदेश के कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं आशुतोष। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का मतदान कल होगा। इस चरण में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा। इनमें उत्तर प्रदेश और पंजाब की 13-13 सीटें, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, उड़ीसा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 और चंडीगढ़ की 1 सीट शामिल है। मतदान सवेरे 7 बजे शुरू होगा और 5 बजे तक चलेगा। निर्बाध और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग ने व्यापक प्रबंध किए हैं। मतदान केंद्रों पर शेड, पेयजल, शौचालय, व्हीलचेयर और बिजली की उचित व्यवस्था की गई है। 7वें चरण के मतदान के समाप्त होने के साथ ही कल देशभर में 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो जाएगा। वोटों की गिनती आगामी 4 जून को होगी। मतगणना की तैयारियों को देशभर के साथ ही प्रदेश में भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों में मतगणना कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नई टिहरी के नगर पालिका परिषद हॉल में आज 334 मतगणना कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान उन्हें निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन और मतदान प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी गई। अदालतों में बढ़ते मुकदमों को देखते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशानुसार आगामी 29 जुलाई से 3 अगस्त तक देहरादून में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उन विवादों का निपटारा किया जाएगा जो आपसी सुलह समझौते के आधार पर निपट सकते हैं। जिले की जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सीमा डुंगराकोटी ने कहा कि लोक अदालत में सुनवाई के लिए 28 जुलाई से पहले पंजीकरण करा लें।
दिनांक 29 जुलाई 2024 से 3 अगस्त 2024 तक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत में कोई भी वादकारी उन सभी वादों को जो वे आपसी सुलह और राजीनामे के आधार पर निपटाना चाहते हैं, वे सभी मामले इस विशेष लोक अदालत में निस्तारित किए जाएंगे। अतः आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में अपने वादों का निस्तारण इस विशेष लोक अदालत में करवाएं और अपने आसपास के लोगों को भी इसकी जानकारी दें। आप लोग अपने मामलों को विशेष लोक अदालत से पहले दिनांक 28 जुलाई तक माननीय उच्चतम न्यायालय में सूचीबद्ध करवा सकते हैं।
प्रदेश के 4 धाम यात्रा मार्गों पर स्वच्छता अभियान जारी है। अभियान में जिला प्रशासन, मंदिर समिति व विभिन्न संगठनों के लोग जुटे हुए हैं। इसके अलावा यात्रा मार्ग पर तीर्थयात्रियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर उन्हें पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। साथ ही यात्रा मार्ग पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई भी की जा रही है। केदारनाथ यात्रा के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है, जिसके चलते धाम और यात्रा मार्ग पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। केदारनाथ नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी चंद्रशेखर चौधरी ने बताया कि स्वच्छ वातावरण को बनाए रखने के लिए यात्रियों को जागरूक किया जा रहा है और उनसे अपील की जा रही है कि वे कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें और स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखें। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को तंबाकू से होने वाले खतरों के बारे में बताना और जागरूक करना है। इस अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में रुद्रप्रयाग जिले के गुप्तकाशी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने रैली निकालकर तंबाकू के सेवन न करने का संदेश दिया। कार्यक्रम में तंबाकू व उसके दुष्प्रभाव विषय पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। चमोली जिले में स्थित विश्व धरोहर फूलों की घाटी कल से पर्यटकों के लिए खोल दी जाएगी। घाटी में इस समय 6 से 7 प्रजाति के फूल खिल चुके हैं। इस साल घाटी में अच्छी बर्फबारी हुई है, जिससे घाटी में अच्छी मात्रा में फूलों के खिलने की उम्मीद है। गौरतलब है कि जुलाई और अगस्त के बीच इस घाटी में सबसे अधिक 300 प्रजाति के फूल खिलते हैं। उस समय काफी संख्या में पर्यटक भी घाटी में पहुंचते हैं। चारधाम ऑल वेदर रोड के तहत चंपावत जिले में चंपावत पिथौरागढ़ लोहाघाट बाईपास का निर्माण होना है। इसके लिए आज उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एके सीकरी के नेतृत्व में गठित समिति ने पिथौरागढ़ और चंपावत का हवाई सर्वेक्षण किया। साथ ही समिति ने चंपावत के मुडियानी से तिलोन तक लगभग 9.4 किलोमीटर बाईपास का स्थलीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि समिति ने निरीक्षण कर लिया है और जल्द ही सड़क निर्माण को लेकर सकारात्मक पहल शुरू की जाएगी।
ये जो माननीय एनजीटी द्वारा गठित जो ओवरसाइट कमेटी है, इसमें आज उनकी पूरी फुल कमेटी आज हमारे पास आई थी और उनका जो मुख्य उद्देश्य था कि वो हमारे जो चंपावत का इस समय जो करीब 9.85 किलोमीटर का जो बाईपास प्रस्तावित है उसमें कुछ ऑनरेबल एनजीटी और ऑनरेबल हाई पावर कमेटी की कुछ ऑब्जर्वेशन थी और उन ऑब्जर्वेशन के क्लैरिफिकेशन के संबंध में आज उनका एक स्थलीय निरीक्षण किया गया है। तो इसका और जो हमारे आने वाले समय में जो हमारा लोहाघाट और पिथौरागढ़ का जो हमारा बाईपास प्रस्तावित है उसके संबंध में आज उनके द्वारा हवाई सर्वेक्षण भी किया गया है और स्थलीय निरीक्षण भी किया गया है।
उत्तरकाशी में आज दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई जबकि 18 अन्य घायल हो गए हैं। घायलों का उपचार नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है। उत्तरकाशी से हमारे क्षेत्रीय संवाददाता ने बताया कि गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर डबरानी के पास भूस्खलन के चलते एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई जबकि 3 अन्य घायल हो गए। भूस्खलन से 2 वाहनों के क्षतिग्रस्त होने की खबर है। वहीं यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलक्यारा के पास आज सुबह यात्रियों से भरी एक बस पलट गई। बस में लगभग 40 तीर्थयात्री सवार थे। इनमें से 15 लोगों को हल्की चोटें आई। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से ब्रह्माखाल स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। बस में सवार सभी तीर्थयात्री कर्नाटक के बताए गए हैं। पौड़ी जिले के कोटद्वार शहर में पार्किंग की समस्या समाधान और सड़कों का डामरीकरण जल्द किया जाएगा। कोटद्वार शहरवासियों की परेशानियों का संज्ञान लेते हुए आज कोटद्वार से विधायक और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए जल्द समाधान करने को कहा। और अब एक नजर मौसम पर। प्रदेश में कल से गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है जबकि आज राज्य के विभिन्न हिस्सों में भीषण गर्मी महसूस की गई। देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 1 जून से मौसम में बदलाव की संभावना है। आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने बताया कि राज्य के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। बारिश से तापमान में 1 से 3 डिग्री तक गिरावट के आसार हैं।
कल से जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो बढ़ रही है प्रदेश में और परसों से तो लग रहा है कि करीब करीब जो हीटवेव कंडीशन है वो तो खत्म हो जाएंगी, लेकिन हाँ ये है कि तापमान जो सामान्य से तो जो है 3 से 4 डिग्री वो ऊपर रहेंगे फिर भी जो है। तो कल से जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी पहाड़ में अगर बात करें, हम हिल्स में बात करें तो वहां पर कुछ जगहों तक में हल्की से मध्यम देखने को मिलेगी और मैदानी क्षेत्रों में भी बात करें तो कहीं कहीं पर हल्की रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी यहां पर भी मिलनी चाहिए। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं तापमान जो है वो गिरेंगे, कम होंगे और ये जो स्थिति है ये 2 तारीख में भी इसी तरह की करीब करीब दिख रही है।
मौसम विभाग ने बारिश के दौरान यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं से सतर्कता बरतने और सुरक्षित स्थानों पर रुकने की सलाह दी है। साथ ही नदी नालों के आसपास न जाने की अपील की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान की तैयारियां पूरी। 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों के लिए कल मतदान। प्रदेश में लंबित मुकदमों के समाधान के लिए 29 जुलाई से 3 अगस्त तक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। चमोली जिले में स्थित विश्व धरोहर फूलों की घाटी कल से पर्यटकों के लिए खोल दी जाएगी। और मौसम विभाग ने कल से प्रदेश के कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।